नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और सभी तेल शोधक संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार समेत 5 राज्यों में हर साल बड़ी संख्या में गुम हो रहे बच्चों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी तेल शोधक संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत पेट्रोल और डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि घरेलू पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के हो रही है।
भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की और इसके अलावा सप्लाईज आर आल्सो मेंटेन्ड, और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है।
संयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि 25,000 एलपीजी वितरकों के पास एलपीजी की कोई कमी नहीं है और प्रतिदिन 50 लाख सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सेंथिल राजन ने लोगों से एलपीजी की बुकिंग केवल आधिकारिक माध्यमों से करने की अपील की है और ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने को कहा है। राज्य सरकार ने एलपीजी वितरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत गठित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर है 0612-2233-050। इस टेलीफोन नंबर पर उपभोक्ता सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक एलपीजी की उपलब्धता और इसके वितरण संबंधित किसी प्रकार की समस्या की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस बीच राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की ओर से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर पटना जिले के बाढ़ और दानापुर थाना क्षेत्र में रसोई गैस की कालाबाजारी के आरोप में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जबकि बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में घरेलू रसोई गैस से दुकान चला रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पूर्वी चंपारण जिले में पताही थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक सीमेंट गोदाम से 36 खाली रसोई गैस सिलेंडर जब्त किया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि जिले में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसियों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 28 धावा दल का गठन किया गया है। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन आज शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री हसनैन प्रदेश के 43वें राज्यपाल होंगे। वे वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां का स्थान लेंगे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा होगा। लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के 3रे चरण का आज अंतिम दिन है। इस दौरान मुख्यमंत्री बेगूसराय और शेखपुरा जिले का दौरा करेंगे। हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया है कि श्री कुमार इस दौरान लगभग 274 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 402 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री लगभग 118 करोड़ रुपए की 190 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे 211 करोड़ रुपए से अधिक की 212 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ब्याडा कैंपस में शीतल पेय फैक्ट्री की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ कैंपस में चल रही विभिन्न फैक्ट्रियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों और जीविका दीदियों को भी संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में लगभग 206 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 316 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री इस दौरान जनसंवाद भी करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज शेखपुरा में 205 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि से 316 विकास योजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सरवा गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। सरवा गांव को जिला प्रशासन द्वारा दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यहीं मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा और जीविका दीदी कस्तूरबा विद्यालय बालिका विद्यालय आदि द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। इस संबंध में जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी आर जी गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां 143 करोड़ रुपए के 120 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जबकि 61 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित 196 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बिहार में सड़क और पुल की केंद्रीय परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री श्री मल्होत्रा ने पटना रिंग रोड के उत्तरी भाग से संबंधित कार्य के लिए एनएचएआई के अधिकारियों को जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बैठक में एसएच 74 से पटना बेतिया मार्ग तक सर्विस रोड निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस दौरान गंडक नदी पर डुमरिया घाट ब्रिज, हाजीपुर छपरा पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने सोनपुर में बनने वाले ब्रिज के काम को 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही वैशाली जिले में लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए रामाशीष चौक पर मल्टी लेवल जंक्शन की स्वीकृति देने पर भी चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में प्रतिवर्ष गुम हो रहे बच्चों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग ने बिहार समेत ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 2 सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब में बच्चों के लापता होने के मामले से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी गई है। पूर्व मध्य रेल ने समस्तीपुर मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों के नाम के साथ अब आधिकारिक रूप से जंक्शन शब्द जोड़ दिया है। ये परिवर्तन कल से प्रभावी होगा। इसके अनुसार हसनपुर रोड, सीतामढ़ी, सरायगढ़, सुपौल, ककरघट और सीशो स्टेशन अब जंक्शन के नाम से जाने जाएंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन स्टेशनों के कोड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इन संशोधित नामों को सभी तरह के रिकॉर्ड में अद्यतन करें। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि जंक्शन के रूप में पहचान मिलने से भविष्य में इन स्टेशनों पर माल ढुलाई, कनेक्टिविटी तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं और मजबूत होंगी। राज्य में बेंगलुरु की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण किया जाएगा। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि व्यवस्था के अध्ययन के लिए अधिकारियों का एक दल बेंगलुरु गया है। उन्होंने कहा कि टीम वहां से लौटकर इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनने के बाद कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण यहां हो सकेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया में सबसे अधिक 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज लगभग सभी स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 20 मार्च तक कई स्थानों पर बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 36.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राज्य सरकार ने मुखिया और सरपंचों समेत पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की समय सीमा 60 दिन तय की है। गृह विभाग के अनुसार जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षकों को तय समय सीमा के अंदर आवेदनों का निष्पादन करना आवश्यक होगा। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से राज्य में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार इस क्रम में 7 बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण हो रहा है। वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र से एक भूसा लदे ट्रक से लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। निगरानी की विशेष अदालत ने घूस लेने के मामले में पटना जिले के दिनारा अंचल कार्यालय के तत्कालीन प्रधान लिपिक राम नरेश प्रसाद को 3 वर्ष सश्रम कारावास और 50,000 रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जमालपुर रेल पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख रूपये नगद और लगभग 15 लाख रूपये मूल्य के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। अररिया के समाहरणालय सभागार में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी विनोद दुहन ने 58 मामलों की सुनवाई की। पटना जिले के धनरुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने ऑटो रिक्शा लूट मामले में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने ईरान और इसराइल युद्ध पर राहत शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज का रास्ता तेल टैंकरों के लिए खुला, भारत आने के लिए 2 पोत को ईरान से मिली हरी झंडी, तेल का 1 टैंकर आज देश पहुंच सकता है। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, महाराजगंज और सोनपुर समेत 8 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी तेज। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ठप, 40,000 छात्रों की पढ़ाई पर संकट। प्रभात खबर लिखता है, बिजली बिल के बड़े बकायेदारों पर गिरेगी गाज, 31 मार्च तक 200 करोड़ रुपए वसूल का लक्ष्य। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार को मिला बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का अवार्ड। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और सभी तेल शोधक संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार समेत 5 राज्यों में हर साल बड़ी संख्या में गुम हो रहे बच्चों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।